नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर देना आज बात करूंगी मनोविज्ञान के ऊपर। और आज हम लोग बात कर रहे हैं सीनियर सेकेंडरी के मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत लेसन वन पार्ट एक की, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे साइकोलॉजी अंडरस्टैंडिंग सेल्फ एंड अदर्स, मनोविज्ञान अपना स्वयं का और दूसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करना या दूसरों की समझ प्राप्त करना। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे अभी जो, क्योंकि ये एक विस्तृत है, इसकी जब हम लोग सिर्फ जानकारी ही आपको देंगे कि साइकोलॉजी में क्या है, क्या इसकी नेचर होती है, क्या इसकी प्रकृति है, क्या इसका स्वरूप है और इसकी क्या क्या फील्ड्स हो सकती हैं, एज ए डिसिप्लिन की किस तरह से डेवलप हुई है। तो जो अभी साइकोलॉजी का जो एक आपका ग्रोथ पैटर्न है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स, बहुत सारे पहलू हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। तो उसको हम लोगों ने डिलिमिट करते हुए दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अभी हम लोग पहले आपसे बात करेंगे कि मनोविज्ञान है क्या, और फिर बात करेंगे हम कि व्हाई वी नीड द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी को पढ़ने की जरूरत क्या है, और फिर बात करेंगे कि साइकोलॉजिस्ट, जो साइकोलॉजी के स्पेशलिस्ट होते हैं, वो क्या होते हैं और क्यों होते हैं। एंड देन वी विल स्टेट ब्रीफली द डेवलपमेंट ऑफ ए साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन। तो जहां तक बात है कि साइकोलॉजी की, तो सबसे पहली बात ये आती है कि व्हाट द साइकोलॉजी इज, साइकोलॉजी आखिर है क्या। और साइकोलॉजी की हिंदी अगर हम कहें मनोविज्ञान, तो पहले मैं साइकोलॉजी के साइकोलॉजी वर्ड से ही आपको थोड़ा सा डिफाइन करूं कि जो आपका साइकोलॉजी है वो आपके जो ग्रीक वर्ड है उससे लिया गया है, और जिसका जो है साइके प्लस लॉगस, साइकोलॉजी है तो साइके प्लस लॉगस से मिलके बना है। ग्रीक भाषा में साइके का जो अर्थ है वो आत्मा है, जबकि लॉगस का जो मतलब है वो अध्ययन है। इसका मतलब है कि आत्मा का अध्ययन। तो आत्मा कहीं ना कहीं, अभी हम देखेंगे, तो अभी अगर आपको समझ में नहीं आएगा कि आत्मा एक बहुत हायर लेवल का वर्ड हो जाता है, तो उस केस में हम लोग बात कर सकते हैं मन का अध्ययन, आपकी बुद्धि का अध्ययन। तो मनोविज्ञान, जैसे कि अगर हम लोग इसकी संधि विच्छेद करें तो क्या है, मन प्लस विज्ञान, कि मन का विज्ञान जो है वो हमारा मनोविज्ञान है। तो इसके अंतर्गत जो हम लोग पढ़ते हैं वो ज्यादातर जो है वो हम अपनी मन और मस्तिष्क की परिस्थितियों के बारे में अध्ययन करते हैं। मैं बहुत सरल शब्दों में बात करूंगी तो मैं कहूंगी कि मनोविज्ञान जो है वो मानसिक प्रक्रियाएं, मानसिक प्रक्रियाएं, अभी अभी हमने बात करी है मन का विज्ञान, तो मानसिक प्रक्रियाएं आपके मन की या फिर आपकी बुद्धि की, अनुभव जो आप पैदा होते हैं, या इन सम केसेस हम ये भी बात कर सकते हैं कि पैदा होने से बहुत पहले, ठीक है, तो बहुत पहले के जो हमारे अनुभव हैं, और उनको चाहे हम व्यक्त करें चाहे व्यक्त ना करें, एक तरह, दो तरह के अनुभव होते हैं, एक ऐसे अनुभव जिन्हें हम व्यक्त करते हैं, एक ऐसे अनुभव जो हमारे मन के अंदर होते हैं, हमारे मस्तिष्क में होते हैं मगर वो अभिव्यक्त हैं, मगर वो हैं। तो उन सभी का जो है एक क्रमबद्ध सीक्वेंस में, और दूसरा साइंटिफिक, देखिए अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। यहाँ पे चीजों का ध्यान दीजिए आप, कि एक तो ये चीज है कि हम ये जिगजैग में अध्ययन नहीं करते कि अभी हमने कुछ देख लिया फिर थोड़ी देर में कुछ देख लिया, नहीं, ये क्रमबद्ध है कि हमें इस सीक्वेंस के बाद ये ऑब्जर्व करना है, इसके बाद हमें ये करना है। और उससे भी बड़ी बात है साइंटिफिक, साइंटिफिक में जो होता है वो मेन रोल यही है कि साइंटिफिक जो भी चीज है वो सीक्वेंस में है, वो क्रमबद्ध है। और अगर आपका साइंटिफिक नहीं है तो फिर वो आपका जो है ह्यूमैनिटी होगा, वो आपका आर्ट है, वो आपका जो है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करेगा। जबकि हम बात कर रहे हैं ये मनोविज्ञान है, मन का विज्ञान है, आत्मा का अध्ययन है, तो डेफिनेटली ये विज्ञान है, और ये विज्ञान जो है वो समय परिवर्तन के साथ, स्थान परिवर्तन के साथ और व्यक्ति परिवर्तन के साथ चेंज नहीं होता। इसका जो चेंज होता है वो जो आपके मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो चेंज होंगी, आपकी जो मस्तिष्क की गतिविधियां हैं वो चेंज होंगी, आपका ट्रेडिशन चेंज है, आपका कल्चर चेंज है, मगर मनोविज्ञान जो है वो वैसे का वैसा ही है। तो देखिए, ये हम बात कर रहे थे मनोविज्ञान की परिभाषा की कि मनोविज्ञान है क्या। तो मनोविज्ञान देखिए क्या करता है, ये हमने कहा ये अध्ययन है किसका, आपके मन और मस्तिष्क का। अब ऐसा है कि मन और मस्तिष्क सिर्फ मेरा अपना नहीं है, मेरे सामने वाला भी है, और मेरा सामने वाला जो है वो अपनी जो उसके मस्तिष्क की प्रतिक्रियाएं हैं, जो उसके अपने अनुभव हैं, जो उसकी जो भी उसने लाइफ में देखा है, उनके आधार पर उसकी अपना मनोविज्ञान है, उसका किसी चीज के प्रति अपनी प्रतिक्रिया होगी, उसी वस्तु के प्रति हमारी अपनी प्रतिक्रिया हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि हमें अगर मनोविज्ञान को समझना है तो मनोविज्ञान जो है वो सेल्फ स्वयं को समझना और साथ साथ में दूसरों को समझने का विज्ञान है। ये हमारे अपने और दूसरों के विज्ञान को समझने की बात करता है। अगला प्रश्न उठता है कि हमें इसकी जरूरत ही क्या है, हमें क्यों समझना है अपने आप को, हमें क्यों समझना है दूसरों को। तो देखिए, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल आप अपने घर में देख सकते हैं, या अभी थोड़ा सा पॉज करिए और अपने दिमाग में जोर डालिए कि आप बहुत दिनों के बाद अपने दोस्त से मिले और वो दोस्त अगर आपसे चेयरअप होके चहकता हुआ ना मिले तो आप उससे क्या कहते हैं, क्या हुआ, तू उदास क्यों है, क्या परेशानी है तुझे, ठीक है। इसी तरह से जब आप स्कूल से मार्केट से थके हारे घर पहुंचते हैं, आपने भी देखा होगा कभी कभी आप बाहर से आते तो उछलते कूदते घर जाते हैं, मम्मी मम्मी ऐसा कहते हुए भागते हैं आप, ठीक है। कई बार क्या होगा कि आप आएंगे चुपचाप सोफे पे बैठ जाएंगे, मम्मी को पता भी नहीं लगेगा कि आप आ गए। अब दोनों स्थितियों में माँ का जो प्रतिक्रिया होगी वो अलग होगी। अगर आप चहकते घर जाते हैं, मम्मी को चिल्लाते आते हैं, तो मम्मी क्या पूछेगी, मम्मी पूछेंगी बताओ बेटा बेटी क्या हुआ, क्यों इतने चहक रहे हो, क्यों इतने खुश हो। अगर आप चुपचाप सोफे पे जाके बैठ जाओगे तो फिर वो पूछेंगी अरे तुम आ गए, क्या हुआ, तुमने बताया नहीं, क्या परेशानी हो गई। तो बताइए कि आपकी मम्मी को तो आपने बताया नहीं कि आप खुश हैं, ना ही आपने अपनी मम्मी को बताया कि आपको परेशानी है, मगर आपकी मम्मी को कैसे पता लग गया, या आपके दोस्त ने तो आपको बताया नहीं कि वो परेशान है, मगर आपने उसको पूछा कि वो उदास क्यों है, तो आपको कैसे पता लगा। क्योंकि बचपन से लेकर, या मैं कहूं कि बचपन से भी पहले, जब आप माता के गर्भ में होते हैं तब आपकी जो आपके अनुभव, आप माता के गर्भ में भी जो माँ के द्वारा, माँ के कान के द्वारा जो सुन रहे हैं, उस चीजों को जो माता जी खाती हैं या जो बात करते हैं, उन चीजों के जो आपके अनुभव हैं, उन अनुभवों के आधार पर, या फिर बर्थ लेने के बाद जब आप सामाजिक प्रक्रिया में आ गए, समाज के साथ आप रूबरू हुए, उस केस में जब आपके अनुभव हुए, तो आपने अनुभव किया कि जब आदमी खुश होता है तो वो चहकता है, वो उसके चेहरे की आभा जो है वो ज्यादा हो जाती है, उसकी आंखों में चमक होती है, उसकी आवाज में खनक होती है, तो आपको पता लग गया कि सामने वाला खुश है। इसी तरह से आपने अनुभव से ये ज्ञात किया कि आपका जो चेहरा अगर पीला पड़ जाए, चेहरा लटका हुआ हो, आंखें बुझी बुझी सी हो और किसी की चाल में शिथिलता हो, तो वो कहीं ना कहीं मन में दुखी होता है या उदास होता है, इसलिए आपको पता लगा, या आपकी मदर को पता लगा कि आप उदास थे, आपको पता लगा कि आपका दोस्त उदास है। ये अनुभवों का अध्ययन है, मगर ये अध्ययन तो आपने किया ही नहीं। आपने तो रोजमर्रा में जो आपके अनुभव थे, उन अनुभवों को आत्मसात करके, उनको जो सिचुएशन थी उस सिचुएशन में, उस अनुभव का को आधार मान के अपनी एक परिकल्पना की, मगर वो परिकल्पना कई बार सही हो सकती है, कई बार गलत हो सकती है, क्योंकि जो छोटी छोटी बातें हैं, ये तो मैंने आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दिया जो आपको पता लग रहा है, मगर आपने ऐसा भी सुना होगा कि लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और फिर आपको ठग के चले जाते हैं, तो उस टाइम तो हमारा जो अनुभव था वो फेल हो गया। तो अनुभव फेल हो गया क्योंकि हमने जो चीजें थी वो हमने अपने अनुभवों से जो सीखा था हमने वो तो आगे अप्लाई कर लिया, मगर वो अनुभव जो हमें सीखने चाहिए थे मगर हमने सीखे नहीं, तो उनकी वजह से, उनकी कमी की वजह से हम जो लोग आर्टिफिशियल बिहेवियर करते हैं, जो दिखावे का व्यवहार कर रहे हैं, उस दिखावे के व्यवहार से हम लोग जो है वो कहीं ना कहीं वहां पे धोखा खा जाते हैं। जैसे कि लोग जानबूझ के सेंपथी के लिए झूठे झूठी दुख बताते हैं, ठीक है। तो वहां पे आपको इस तरह से ज्ञान होना चाहिए कि कौन सच में दुखी है, कौन आपको धोखा देने के लिए इस तरह से व्यवहार कर रहा है, या कौन अपनी किसी चीज को छुपाने के लिए इस तरह से व्यवहार कर रहा है। तो और ये ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत लार्ज स्केल की बात कर रहे हैं, मैं इन जनरल भी कह रही हूँ। मान लो आप स्टूडेंट है और आपके सामने आपका टीचर है, अब टीचर ने आपको डांट दिया किसी बात के लिए, आपको क्या आएगा? आपको गुस्सा आएगा, पर आप क्या गुस्सा करेंगे? आप नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारा अनुभव है कि अपने से बड़ों को या वो मेरे टीचर हैं उनको मुझे गुस्सा नहीं करना है, मगर गुस्सा तो आपको आ रहा है, तो आपने उस बिहेवियर को अपने को अव्यक्त किया, उसे व्यक्त नहीं किया, उसे दबा लिया, ठीक है, और वो आपके मन में कहीं कुंठा बन गई। इसी तरह से अगर आपका दोस्त होता तो आप उसको डांट देते, आप उसके साथ लड़ जाते, तो वो कुंठा नहीं बनती। तो यहाँ पे जो मनोविज्ञान है वो व्यक्त जो आप कर रहे हैं उस व्यवहार को तो अब देखता ही देखता है, और उसके आधार पर वो एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष पर भी पहुंचता है। परंतु वो जो कुंठाएं, जो अव्यक्त आपका व्यवहार है उसके बारे में भी बात करता है, ताकि जो कुंठाएं आपके मन में बन गई हैं वो भी वहां पे ना बने। जहां पे हम बात मनोविज्ञान की कर रहे हैं, तो मनोविज्ञान के बहुत अलग अलग मनोविज्ञानिकों ने अलग अलग तरह से वो दी हैं, फिर भी हम लोग जो है वो बात करते हैं कि मनोविज्ञान जो है वो एक तो अनुभवों का अध्ययन करता है, जो आपका स्टडी ऑफ एक्सपीरियंसेस है, कि जो आपके एक्सपीरियंसेस है, आपके जो तजुर्बे हैं उनका अध्ययन करेगा, आपकी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, आपके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है जो कि आपने व्यक्त नहीं किया है उसका अध्ययन करेगा, और फिर उसके बाद वो करता है व्यवहार का अध्ययन, कि आप कैसे बैठ रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, क्या आप बोलते हैं, कैसी आपकी बॉडी लैंग्वेज है, कैसे आपके फेस एक्सप्रेशन से, कैसे आपके गेस्चर्स हैं। व्यवहार में हर चीज आती है। हम लोग जो मनोविज्ञान से जुड़े नहीं हैं, वो लोग इतनी बारीकी से दूसरे आदमी को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, मगर हम लोग जो मनोविज्ञान को एज ए विषय पढ़ते हैं और मनोविज्ञान में रुचि लेते हैं, वो हर एक गतिविधि में रुचि लेते हैं और हर एक गतिविधि का जो है वो बहुत बारीकी से निरीक्षण करते हैं, उसका बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं, ताकि वो खुद को समझ सके और अपने साथ साथ दूसरों को समझ सके। समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम लोग खुद को समझ के अपनी कमजोरियों को, अपनी जो हमारी विशेषताएं उनको समझ सकें। इसी तरह से समझना इसलिए जरूरी है कि हम सामने वाले को समझ सकें, और सामने वाले को समझने के साथ साथ हम लोग जो है वो वहां पे उसमें जो हमें सामंजस्य बनाना है या जो प्रॉब्लम्स उसे फेस आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को जो है वो वहां पे हमें उनका दोनों में कोऑर्डिनेशन हम लोग बना सके। यहाँ पे जो नीड फॉर द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी की जब बात करेंगे, तो ये हमें हेल्प करती है जो आपके डिफरेंट मेंटल फंक्शंस हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, और साथ में ये भी हेल्प करती है कि किस तरह से डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट लोग किस तरह से बिहेव करते हैं। आप देखेंगे कि एक ही इंसान एक ही सिचुएशन में अलग अलग तरह से बिहेवियर कर लेगा अगर वो टाइम अलग अलग है, ठीक है। एक बच्चा एक सिचुएशन में अलग तरह से बिहेवियर करेगा, और वही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो क्योंकि अब एज फैक्टर आ गया है, तो उसी सिचुएशन को वो अलग तरह से डील करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो 2 साल का बच्चा है जिसे अंधेरे से डर लगता है, जिसे अजनबी से डर लगता है, क्या 20 साल के बच्चे को भी अंधेरे से डर लगेगा? इन एक्सेप्शनल केसेस आपको डर नहीं लगेगा। तो देखिए, सेम बच्चा है, सेम सिचुएशन है, मगर फैक्टर, एज फैक्टर डिफरेंट है। इसलिए आपका बिहेवियर डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग समय में, तो आपका व्यवहार को अध्ययन करना भी जो है वो हमारा साइकोलॉजी की जरूरत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर रिलीजन, एक पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर कंट्री, उन सबके जो है वो अलग अलग से वो होते हैं, बिहेवियर होते हैं। और आप किसी को भी ऑब्जर्व करते हैं और आप एकदम से समझ जाते हैं कि ये लोग जो फलानी कम्युनिटी के हैं। आप देखिए, आप अपने देश में अगर लामास को देखेंगे तो आप उनके देखने से ही एकदम से समझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फिजिकल स्ट्रक्चर, उनका रहन सहन, उनकी भाषा, उनका ड्रेसिंग सेंस हमसे मेल नहीं खाता। इसी तरह से आप देखिए, आप अपने आस पड़ोस में देखेंगे तो आपको खुद पता लग जाता है कि कौन किस रिलीजन का है, कौन किस पर्टिकुलर रीजन का है। इसके अलावा आपको ये भी पता लगता है जब आप किसी से बात करते हैं कि कौन शाई नेचर का है, कौन ओपन है, कौन इंट्रोवर्ड है, कौन एक्स्ट्रावर्ड है, ठीक है, कौन झूठ बोलता है, कौन सच बोलता है, कौन कॉन्फिडेंट है, कौन डरपोक है। कैसे? ये सब जो है वो मनोविज्ञान है, और इन्हीं सब का जो अध्ययन है उसी के लिए हमें मनोविज्ञान की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे दोनों चीजें वाइस वर्सा है। हम जो है वो बिहेवियर से पढ़ के ये पता लगा सकते हैं कि आपके मेंटल प्रोसेसेस क्या चल रहे हैं, आपके मानसिक प्रतिक्रियाएं क्या चल रही हैं, और आपकी मानसिक प्रतिक्रिया को देख के हम ये समझ सकते हैं कि आप आने वाले टाइम में क्या व्यवहार करेंगे। तो चीजों को समझने के लिए और जो वातावरण है, जो आपकी परेशानियां हैं, उन चीजों को समझने के लिए जो है वो मनोविज्ञान का अध्ययन जो है जरूरी है। अब आपका हम लोग समझ सकते हैं, अगर मैं कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दूं तो साइकोलॉजी इज नीडेड टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ बेटर इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियलिटी। हमें हमारे में कितनी क्षमता है और हम क्या कर सकते हैं, या हम में क्या कमियां हैं, हम उन्हें किस तरह से जो है ओवरकम कर सकते हैं, इन सब चीजों को समझने के लिए मनोविज्ञान की जरूरत है। इसी तरह से जब हम दूसरों की बात करते हैं तो दूसरों में भी क्या प्रॉब्लम है उनको भी हम लोग समझने की बात जो करते हैं, ताकि वो जो है वहां पे अपना प्रॉब्लम जो है समझ सके। यहाँ पे साथ में हम प्रकृति की बात कर रहे हैं, तो जहां पे बात कर रहे हैं प्रकृति की, तो हमने देखा हुआ है कि कोई भी एक्शन हो रहा है, मैं करूं, आप करें, आपके कोई और रिलेटिव करे, या सोसाइटी में कोई भी करे, मगर कोई भी जो बिहेवियर ऑब्जर्वेबल, जिसे हम देख पा रहे हैं, या सम हाउ अगर आप ऑब्जर्व नहीं भी कर पा रहे हैं, और आप उसे ऑब्जर्व करें तो आप फिकर पाएंगे, मगर आपको सामने एकदम से नहीं दिख रहा है, किसी भी तरह का अगर आपका एक्शन आप देखते हैं, तो वो जो है वो तीन चीजों का जो है वो कॉम्बिनेशन होता है, ब्रेन, माइंड एंड द बिहेवियर। और जब मैं बात कर रही हूं ब्रेन की, तो देखिए ब्रेन जो है वो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो आपका फिजिकली जो हमारा दिमाग है, वो आपका पता है कि आपके सिर के ऊपर वाले हिस्से में जो है वो फोरहेड के ऊपर जो है उसके अंदर जो है वो हमारा ब्रेन होता है, दैट इज द फिजिकल। दिमाग की अपनी संरचना है, वो आप अगर नेट पे खोलेंगे तो आप अपने दिमाग की संरचना को देख सकते हैं। फिर माइंड, तो माइंड जो है दैट इज द डिफरेंट फ्रॉम द ब्रेन, वो दिमाग से अलग है। माइंड जो है दैट इज द मेंटल एक्टिविटीज, जो इसमें सिक्रेशंस हो रही हैं, जो इसमें थॉट प्रोसेस चल रहा है, जो इसमें एक्टिविटीज हो रही हैं, दैट इज द माइंड। क्योंकि आप देखिए, अगर आपकी डेथ एकदम से किसी की हो जाती है, इन दैट पर्टिकुलर केस दिमाग, क्योंकि वो फिजिकल स्ट्रक्चर है, वो तो दिमाग है ही है, मगर उसकी सोचने की शक्ति, उसकी प्रतिक्रिया देने की शक्ति, उसका जो मेंटल प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है, बिकॉज माइंड इज नॉट द फिजिकल स्ट्रक्चर, इट्स ए बिहेवियर एक्टिविटी। और जो एक्टिविटीज है उन एक्टिविटीज के बिहाफ पे हमारी बॉडी जो रिएक्ट करती है। और आप ये इस चीज से समझ सकते हैं कि जब आपका मन करता है कि आप बैठ जाए, आप चलने का लगते हैं, आपको मान लो 2 किलोमीटर चलना है, फिर आपको 1 किलोमीटर के बाद ऐसा क्यों फील होने लगता है कि नहीं नहीं बैठ जा बैठ जा? क्योंकि आपका दिमाग जो है वो प्रतिक्रिया दे रहा होता है कि अब आप थक गए हैं, अब आप आराम कर लीजिए, नहीं तो टांगे हैं टांगे चलती रहे, हाथ है लिखता रहे। भोजन करते हैं हम लोग, कैसे हमें पता लगता है कि हमने अब भोजन खाना बंद कर देना है? हम खाते ही क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि हमारे माइंड में प्रतिक्रिया होती है और वो हमें संदेश भेजता रहता है, वो हमें संदेश देता है। और वो जो संदेश हमें दे रहा है और वो संदेश के द्वारा जो हम बिहेवियर करते हैं, वो बिहेवियर का अध्ययन करना ही हमारा जो है मनोविज्ञान है। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मनोविज्ञान जो है वो आपके मन और मस्तिष्क की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। और अगर हम बात करें, फिर से कंक्लूड करें, तो इट फोकस प्राइमरली ऑन द स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटल एंड बिहेवियर एक्शंस। क्योंकि जो बिहेवियर है उससे आपके माइंड पे असर आएगा, और जो माइंड पे असर आएगा उसके बिहेव पर आपका बिहेवियर है। तो ये दोनों आपके 22 वर्षा हैं, पूरक हैं एक दूसरे के साथ, और इनका अध्ययन करना ही हमारा मनोविज्ञान है। अब देखिए, आप पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान में हम बात कर रहे हैं कि हम जो है वो अपने और दूसरों की व्यक्त और अभिव्यक्त मन और मस्तिष्क की प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो हम जो अध्ययन करते हैं वो हम लोग डे टू डे जनरल टर्म्स में करते हैं, थोड़ा बहुत जानने के लिए, हल्का फुल्का जान लिया, हल्का फुल्का समझ लिया, सामने वाला मुझे चीट कर रहा है नहीं कर रहा है, मुझसे फ्रेंडली है या मेरा दुश्मन है, ये छोटी मोटी डेली डेली की बातें हम लोग समझ पाते हैं, दैनिक जो अपनी होती है। माँ ने देख लिया कि बच्चे को भूख लग रही है, माँ ने समझ लिया साइकोलॉजिकली कि बच्चा दुखी है, बच्चे ने देख लिया कि माँ परेशान हो रही है या मेरा छोटा भाई दुखी हो रहा है। तो ये तो एक ऐसे ही अध्ययन है जो हम लोग बिना लर्न किए भी करते हैं, मगर अगर हम साइकोलॉजी का बहुत गहरे से अध्ययन करें, उसे थॉरली अध्ययन करें, तो जो थॉरली अध्ययन करते हैं उन्हें हम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। और व्हाट साइकोलॉजिस्ट डू, साइकोलॉजिस्ट मतलब मनोवैज्ञानिक, जो मन के विज्ञान का अध्ययन करेंगे उनको कहते हैं हम मनोवैज्ञानिक। तो मन के अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को क्या करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करें, तो डेफिनेटली मनोविज्ञान जो है वो मन मस्तिष्क की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करना होता है। तो मनोविज्ञान जो वैज्ञानिक जो है वो अध्ययन करना जो है वो मनोविज्ञान है, मगर वो अध्ययन करेगा कौन, वो मनोवैज्ञानिक है। तो मनोवैज्ञानिक जो है वो उन सारी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। और क्यों करते हैं वो मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी। देखिए, मनोवैज्ञानिक को अध्ययन करने के जो मेन गोल्स हैं वो 2 गोल्स हैं। पहला, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ बिहेवियर। देखिए, इन जनरल टर्म आपने देखा होगा कि जनरल लोग जो है वो वैसे ही है, कभी गुस्सा हो रहे हैं, कभी खुश हो रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी खा रहे हैं, कभी नहीं खा रहे हैं। तो एक जनरल सी लाइफ जो हम जनरल क्राउड देखते हैं वो ऐसी ही होती है, मगर उसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो जनरल नहीं होती हैं। तो जो कॉम्प्लेक्सिटीज बिहेवियर में आ जाती हैं, मतलब एक हद तक गुस्सा करना नॉर्मल बात है, चलो छोटी सी किसी ने बात करी गुस्सा आ गया, ठीक है, समझ में आता है, आ गया, मगर हद से ज्यादा गुस्सा करना, और ऐसा भी क्या गुस्सा करना कि किसी की जान पे आ जाए, ऐसा भी क्या गुस्सा करना कि आपने घर का तोड़ फोड़ कर दिया, तो ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, ये अबनॉर्मल बिहेवियर है। मतलब ये व्यवहार के साथ आपकी कॉम्प्लेक्सिटीज है, ये आपके व्यवहार में जो है वो कॉम्प्लेक्सिटीज पैदा कर रही हैं। तो उनको अंडरस्टैंड करना कि व्हाट आर द रीजंस, किसी को अगर जोर से ज्यादा गुस्सा आता है तो क्यों आ रहा है, अगर कोई जोर से ज्यादा शाई है तो क्यों है। आपने देखा होगा लोगों को ऊंचाई से फोबिया होता है, बड़ी हाइट पे नहीं जा सकते, लोगों को पानी से फोबिया होता है, पानी के पास नहीं जा सकते, लोगों को आग से फोबिया होता है, भैया आग से डर लगता है। डर किसको नहीं लगता, सबको ही लगता है, मगर डर लगने का मतलब ये थोड़ी है कि माचिस की तीली जलाएंगे और उससे भी डरेंगे। डर का मतलब है कि एक भीषण आग लगी हुई है, उसमें हम अंदर कैसे जाएं, वो डर एक नेचुरल डर है, वो समझ में आता है क्योंकि हमें पता है कि वो हमारा अनुभव है कि अगर हम इस भीषण आग में अंदर जाएंगे तो हम जल जाएंगे, ये हमारा अनुभव है। और उस अनुभव के आधार पे हमने ये नतीजा निकाला कि हमें उस भीषण आग में नहीं जाना है। परंतु ये क्या बात हुई कि एक माचिस जलाओ और आप उसमें डर जाओ, इसका मतलब है ये आपका एबनॉर्मल बिहेवियर है। आपको हाइट से डर लगता है, समझ में आता है कि एक बहुत गहरी ऊंचाई पे जाने के बाद आदमी को गिरने का डर है क्योंकि पता है कि हम गिर जाएंगे तो हमारा कुछ भी नहीं बचेगा, मगर बस जरा सी दो सीढ़ियां, चार सीढ़ियां, एक फ्लोर, दो फ्लोर के ऊपर जाके भी, और उसमें भी इतना डर, लोगों को लिफ्ट में बैठने का डर होता है, ठीक है। तो इस तरह के जो डर हैं ये एबनॉर्मल होते हैं, और मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वो इस तरह के कॉम्प्लेक्सिटीज, ये मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स दिए हैं, देयर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। और तो और छोटे लोगों को मैथ्स का फोबिया होता है, मैथमेटिक्स पढ़ने का फोबिया। अरे सब्जेक्ट नहीं आता, नहीं आता कोई बात नहीं, मगर उससे फोबिया क्यों क्रिएट करना है, उससे डर क्यों क्रिएट करना है। तो अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, इट्स ओके, लीव दैट, मगर उसकी वजह से हमें डर लगे, दैट्स नॉट ए गुड थिंग। तो वो आपका फियर नहीं है। तो मनोवैज्ञानिक जो है वो आपकी इन चीजों को पहले अंडरस्टैंड करते हैं। अब कैसे करते हैं वो हम लोग अगली आगे जो पार्ट आएंगे उनमें उनकी चर्चा करेंगे, और फिर उनका जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसके बेस पे वो उनको एक्सप्लेन करते हैं कि उस कॉम्प्लेक्सिटीज, उन बिहेवियर के पीछे रीजन क्या है, क्या कारण है, वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। अभी तो मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि मनोवैज्ञानिक करते क्या है। द सेकेंड जो करते हैं, कंट्रीब्यूटिंग टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। देखिए जब वो फर्स्ट केस चीज कर लेंगे, उन्हें ये पता लग जाएगा कि किसी की लाइफ में कोई कॉम्प्लेक्सिटीज है, कोई अगर बाधाएं हैं, कोई मुसीबतें हैं, तो वो क्यों है और किस वजह से है, तो डेफिनेटली वो उनकी जो उसकी जो लाइफ है उसके लिए रेमेडीज भी देंगे, उनके लिए उपचारात्मक वो सलाह भी देंगे। उससे क्या होगा, उससे जो है उस आदमी या औरत या जो भी ह्यूमन बीइंग था उसकी लाइफ जो है, क्वालिटी लाइफ जो है वो आपकी इम्प्रूव होगी। और अगर इसी तरह से एक पर्टिकुलर देश के सभी देशवासियों की जो मानसिक स्थिति है, जो मन की स्थिति है, अगर हम लोग स्ट्रोंग बना पाते हैं और हम लोग उसे हेल्दी बना पाते हैं, तो आपका डेफिनेटली हम लोग जो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ है उसमें को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो देखिए मनोविज्ञानिक का जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोल है, दैट इज कंट्रीब्यूशन टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। और वो अपन लोगों की लाइफ को सुधारने के जो है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए एक अच्छी खासा योगदान देते हैं। अब हम देख जानते हैं कि मनोविज्ञान जो है वो है अध्ययन मन और मस्तिष्क की प्रतिक्रियाओं का, क्योंकि मन और मस्तिष्क की प्रक्रियाओं का ही हमारे व्यवहार पे असर होगा, और उस व्यवहार से ही हमारे सोसाइटी पे असर होगा, और उसी सोसाइटी से हमारा देश बनेगा। तो अगर मेरे मन और मस्तिष्क की प्रतिक्रियाएं समझ ली जाए, और उस प्रतिक्रियाओं का अगर कुछ नकारात्मक है उनको सकारात्मक कर दिया जाए, तो जो सोसाइटी के प्रति मेरी देनदारी है या सोसाइटी के प्रति मेरा जो योगदान है, वो डेफिनेटली हम लोग वहां पे पॉजिटिव होगा, और फिर हम लोग देश के प्रति जो है वो एक अच्छा सा काम कर सकेंगे। तो ये मनोवैज्ञानिक का रोल होता है। नो डाउट कि मनोवैज्ञानिक जो है वो पहले जो था, जब हम लोग स्टार्टिंग में मनोविज्ञान की बात करते हैं, तो स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम्स थी वो बहुत लिमिटेड थी, मतलब मनोविज्ञान कोई बहुत पुराना एस्पेक्ट नहीं है, मगर अभी जो हम लोगों ने इसने बहुत जल्दी से ग्रोथ पकड़ी है, क्योंकि अब जो है आपने देखा होगा कि फॉर एक्स वाई जेड रीजन, मैं रीजंस पे अभी डिस्कशन नहीं कर रही हूँ, चर्चा से अलग हो जाएगा, तो फॉर एक्स वाई जेड रीजन जो है वो हर आदमी परेशान है, हर इंसान परेशान है, उसकी परेशानी के स्तर अलग अलग हो सकते हैं, उसके परेशानी के कारण अलग अलग हो सकते हैं, मगर वो किसी भी देश में है, किसी भी समय में है, परेशान है। और उस परेशानी की वजह से जो है वो आपका जो मनोविज्ञान है उसकी नीड और बढ़ गई है, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक स्वस्थ इंसान जो है, जो स्वस्थ शरीर है उसके अंदर स्वस्थ आत्मा बसती है, और स्वस्थ आत्मा जो है वो ही आपका कारण है एक स्वस्थ शरीर का। दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा तो डेफिनेटली आपका मन भी स्वस्थ होगा, वाइस वर्सा। अगर आपका मन स्वस्थ है तो आपका शरीर भी स्वस्थ होगा। अगर आपके मन में चिंताएं हैं, क्रोध है, घृणा है, डर है, तो डेफिनेटली आपकी जो शरीर है उस पर भी उसका असर पड़ेगा और आप बीमार भी हो सकते हैं। तो जो मनोवैज्ञानिक है वो इन्हीं सब चीजों के साथ डील करते हैं, ताकि आपका मन भी स्वस्थ रहे और आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहे, और आप अपनी सोसाइटी, अपने समाज को भी स्वस्थ रख सके। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग डेवलपमेंट ऑफ ए साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन। तो जहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग मनोविज्ञान की, तो ये देखना है कि जो अगर हमें ह्यूमन बीइंग्स को जो इम्प्रूव करना है, उनके व्यवहार को सकारात्मक करना है, या फिर हमें एक शांति प्रिय लाइफ अपने समाज को देनी है, उस केस में जो ह्यूमन नेचर है उसे अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और इसके कंसर्न में बाद में जो है इंडियन थिंकर जो है उन्होंने भी कई थ्योरीज दी हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा जो आपकी कॉन्शियस थ्योरी थी वो है आपकी सेल्फ माइंड एंड मेंटल एक्टिविटीज। तो यहाँ पे देखिए, हमारी इंडियन थ्योरीज में या बाकी भी लोग मानते हैं कि जो हमारा माइंड है वो कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस है, और इनकी स्टडी जो करना है वो आपको जरूरी है, ताकि हम लोग जो है, देखिए एक सामने वाला जो कॉन्शियस बिहेवियर है वो तो सामने सामने दिख जाएगा, मगर एक अनकॉन्शियस बिहेवियर है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ एक ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशंस होती हैं जो सडनली आती हैं, और सडनली आई हुई जो कॉन्सिक्वेंसेस है उनमें आपके रिस्पॉन्सेज भी बड़े सडन होते हैं, बड़े डिफरेंट होते हैं। आप कभी सोचते ही नहीं है कि आपके साथ ऐसा कुछ हो भी सकता है, ठीक है, या आप इस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं, आपको पता भी नहीं होता है। तो वो जो है वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो हमारे अनुभव होते हैं, या सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारे अनुभव होते हैं, उनके भी आप पे हम लोग वहां पे जो है वो डिसीजंस लेते हैं और जो है अपना रिएक्शंस करते हैं। अब यहाँ पे जो है, जब देखा गया कि जो मनो, जो आपके मनुष्य है या जो इंसान है उनकी जो व्यवहार है वो डे बाय डे जो है वो अलग होता चला जा रहा है, इन दैट पर्टिकुलर केस वो वहां पे क्या इशू आ रहे कि वो क्यों अलग होता चला जा रहा है, क्यों इंसान में इंसानियत कम होती चली जा रही है, क्यों वो काइंड नहीं रह रहा है, क्यों वो आजकल इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्यों एक दूसरे के प्रति इतनी घृणा है। तो जब इन एस्पेक्ट्स को देखा गया तो ये समझा गया कि अब मानव की जो ह्यूमन बीइंग्स है उनकी जो नेचर है उसका थॉरली अध्ययन किया जाए, और सिर्फ ये अध्ययन सिर्फ मनोवैज्ञानिक ना करके हर कोई से पढ़े। तो एक तरह से इसके एज ए डिसिप्लिन लेने का जो है वो एक मेन ये भी मोटिव है कि इसे सब लोग पढ़ेंगे, सब समझेंगे, खुद को और दूसरों को, तो हो सकता है कि हम एक स्वस्थ समाज की वहां पे नींव रख सके। यहाँ पे जो आपका डिसिप्लिन है ये तो आपका एंड ऑफ 19th सेंचुरीज में आया है, और जो आपका सबसे पहले जो आपका लेबोरेटरी साइकोलॉजिकली साइकोलॉजी की बनी थी वो आपकी जर्मनी में 1879 में बनी थी, और उन्होंने जो है इसमें जो भी आपके मनोविज्ञान थे उसके ऊपर कार्य करना स्टार्ट किया, और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे साइकोलॉजी और साइकोलॉजी के प्रति जो लोगों का एक रुझाव था वो धीरे धीरे उनका बढ़ता चला गया। अब आपका जो मेन स्कूल जो है इसमें, तो देखिए अलग अलग मैंने कहा कि मनोविज्ञान है वो मन के आपके आत्मा का अध्ययन है, आपके मन और मस्तिष्क का अध्ययन है। कर्ता कौन है? मनोविज्ञानिक करता है। तो मनोविज्ञानिक ने भी इसमें अलग अलग दिए, अलग अलग लोगों के मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अलग अलग स्टडीज करी हैं, मगर उनके जो है वो एक अलग अलग से एस्पेक्ट्स निकल के आए। उन्होंने अलग अलग स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को डिफाइन किया, जैसे कि स्ट्रक्चरलिज्म, ये आपका एडवर्ड के था, और एडवर्ड जो कहता है कि ये कॉन्शियसनेस और इसके कंपोनेंट्स की स्टडी है, जबकि आपकी जो हमारी इंडियन फिलोसफी है वो बात करता है ये कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस की स्टडी है, जबकि आपका एडवर्ड कह रहे हैं कि कॉन्शियसनेस एंड इट्स कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स में क्या है? कॉन्शियसनेस आप जो दिख रहा है, और कंपोनेंट्स सेंसेशन, जैसे आपको एकदम से कोई छुए तो आपको फील होता है ना, आपको गुड टच बैड टच सब फील होता है, तो दैट इज अ सेंसेशन। इमेजेस कि आपको एक पिक्चर देख के ही पता लग जाता है, जो आपने इमेज बना रखी है कि एक सुंदर सी जो भी सामने चीज ह्यूमन बीइंग होगा वो पोलाइट होगा, वो सॉफ्ट होगा, वो आपका ऑनेस्ट होगा, इफेक्ट्स, तो ये सब चीजें इमेजेस पे है। फिर हमने बात करी है फंक्शनलिज्म की, ये विलियम जेम्स का है। विलियम जेम्स बात करते हैं कि जो आपका स्टडी ये है साइकोलॉजी, दैट इज अ फोकस्ड ऑन कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस में क्या क्या आ गई? मेमोरी, क्या आप कितना याद कर सकते हैं, क्या आप लर्न कर सकते हैं, और आपकी इमोशंस रिलेटेड टू द सर्वाइवल, ग्रोथ, अडाप्शन, अडाप्टेशन, मतलब कि आपका पर्टिकुलर किसी चीज के प्रति आपका संवेगात्मक जो है वो कितना है, मतलब कि आपका जीवन के प्रति आप कितने संवेगात्मक हैं। तो हो सकता है आपको मृत्यु से बहुत ज्यादा डर लगे, ठीक है। लर्निंग एंड आपकी मेमोरी, देखो चीजों को लर्न करके, एक तो हमने अनुभव जो है वो मैंने देखा कि आग जो है, जब भी मैंने आग के पास गई तो आग से गर्मी मिली, तो एक मैंने अनुभव किया कि आग से गर्मी मिलती है। आग ज्यादा गर्मी के चक्कर में जब मैंने आग को हाथ में पकड़ा तो मेरा हाथ जल गया, तो इसका मतलब है कि गर्मी दूर से ही सही है, उसको पकड़ना नहीं है, ये मेरा अनुभव है, ठीक है। ये मैं कैसे सीखा? डायरेक्ट इंटरेक्शन से। यही चीज जो है मैंने अपने बच्चे, क्योंकि मैंने तो आग को पकड़ा और फिर सीखा, मगर मैं अपने बच्चों को कैसे सिखा रही हूं, लर्न करके, कि ये आग है, इस आग को हाथ लगाने से जल जाते हैं, तो ये लर्निंग है, ये आपने लर्न किया है, आपने देखो देखा नहीं, उसे प्रैक्टिकली सीखा नहीं, एक्सपीरियंस नहीं किया है, मगर क्योंकि आपको किसी ने बताया कि इससे ये होता है, आपने लर्न कर लिया। जैसे कि आपको पता है कि स्नेक जो है वो आपको काटता है, काटेगा तो आपकी डेथ हो जाएगी, और एक दिन रास्ते में आप जब चल रहे थे तो आपने क्या कि देखा? स्नेक देखा। अब स्नेक देखा, आपने क्या करना है? एकदम से वहां से भागोगे या फिर चिल्लाओगे सांप सांप सांप, कैसे? क्योंकि जो आपने लर्न किया था वो आपके मेमोरी में था, आपकी मेमोरी ने आपको बताया कि ये सांप है, ये सांप है, ये खतरा है, ये खतरा हमें इस तरह से हो सकता है कि अगर ये हमें काट लेगा तो हमारी मृत्यु हो सकती है, इसका सोल्यूशन ये है कि हम यहाँ से भाग जाए या हम यहाँ से सहायता के लिए किसी को बोले। तो ये आपका मेमोरी थी। तो यहाँ पे आपका जो है ये कहते हैं साइकोलॉजी में कि आप लर्न करके जो आप सीख सकते हैं वो भी आपका मनोविज्ञान है। बिहेवियरलिज्म जो कहते हैं, दैट इज, वो तो सीधी के सीधी बात करते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ ऑब्जर्वर बिहेवियर है, सीधा जो दिख रहा है उसकी स्टडी करिए, मगर देख रहा है स्टडी करिए का मतलब ये नहीं है कि अभी मैंने आपको देखा और अभी मैंने आपको कंक्लूड कर दिया। ऑब्जर्वेशन मीन्स ए लॉन्ग ऑब्जर्वेशन, मैं आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ऑब्जर्व करूं और फिर किसी कंक्लूजन पे पहुंचूं और देखूं कि कितना आपका आर्टिफिशियल है, कितना आपका रियल है, तो आपका वो बिहेवियर है। गैसलेट की बात करेंगे हम लोग, तो ये भी जो फोकस करता है कॉन्शियसनेस परसेप्शन, आपका किसी पर्टिकुलर चीज के प्रति क्या नजरिया है। एक गिलास है, आधा खाली है आधा भरा हुआ है, तो ये आपका परसेप्शन है कि आपको वो आधी खाली खाली दिखेगा या आधा भरा हुआ दिखेगा। ये आपका अपना बोध है, बोध का स्तर। तो ये गैसलेट जो है वो आपका इसके बारे में बात करता है। धन्यवाद, थैंक यू।